वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जारुडरोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं प्रातःस्कन्दनिवेशितो जलभुजम् दिन हम लोगों के कार्तिक व्रत का निर्विघ्न रूप में भली भांति संपन्न हुआ। आज आप लोग अभी किल्लोल कुंड ग्वाल पोखरा रत्न बेदेवी चरण चिन्ह और फिर श्याम वेदी, इसके बाद में नारद कुंड इत्यादि का दर्शन किया। वहाँ की कथाएं भी सुनी होंगी। सबका मूल उद्देश्य है कि इन स्थानों में एक अद्भुत शक्ति है। लीला स्थलियों में कृष्ण के समान ही शक्ति है, कम नहीं। इसलिए हम बद्ध जीव जो जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं संसार चक्र में, इस शरीर में मैं और मेरे की बुद्धि कर भगवान को भूल कर तरह तरह के दुखों को पा रहे हैं, यहां इन स्थानों में जाने पर ये भाव दूर हो जाएंगे, कृष्ण की भक्ति होगी, अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सके। विशेष करके ये लीला कथाएं भी भगवान से अभिन्न है। इन लीला कथाओं के श्रवण से भी ऐसी शक्ति प्राप्त होते आती है जो हम इन दुखों से दूर रहकर भगवान के चरणों में भक्ति करेंगे और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। जीवों के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है संसार सागर से तरने, इसलिए हम लोग कार्तिक व्रत में इन लीला स्थलियों पर जाते हैं, लीला कथाएं करते हैं, कीर्तन करते हैं। आज हम जो नारद कुंड में गए, ओ बनमारा, वहां पर क्या कथा है बोलो तो संक्षेप में। ওখানে কি কথা বলেছিল
রসানন্দ নাথ মন্দির? আচ্ছা,
अरे की भगवान
श्री गुरु पंचाश्रिता पावरे भूषण
में
श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे उस नारद कुंड की कथा वर्णन करने के लिए इसलिए मुझे आदेश दिए। नारद कुंड की कथा नारद जी की चरित्र बहुत अद्भुत और मनोरम भी है। सब विधा में हम लोग देखते हैं नारद जी के सेवा अद्भुत भी रहा है। इसलिए नारद शब्द की कहते हैं उन्हें संस्कृत में नारद नारद शब्द की अर्थ है ज्ञान भी कहा जाता है भक्ति युक्त ज्ञान। संस्कृत में नारद शब्द की भी अर्थ भी बताया आचार्य पालो ने जहां पर भक्ति युक्त ज्ञान अर्थात नारद जी यह भक्ति युक्त ज्ञान सबके हृदय में प्रदान करते यह नारद मुनि की विशेष कथा इस प्रकार आचार्य भाष्कर ने वर्णन करते हैं। ये नारद जी और राधा गोविंद की अपराध निवारण तथा श्रवण करके विशेष करके लोकेंद्र प्रसाद कृष्ण ने माधुर्य सिंगारस तथा श्रवण करके और उनके हृदय में सिंगारस की लालसा दी वह सिंगारस लालसा तो जगह उन्होंने जगी और उसी स्थान पर अतल कुसुम सरोवर के निकट आकर के हजारों साल तक तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने नारद मुनि के रूप में वह भाव अधिक प्राप्ति अधिकी और राधा गोविंद के सेवा में लगी। इस प्रकार वर्णन करते हैं ये नारद जी कितने सुंदर लीला आदि प्रस्तुत करते हैं अष्टकालीन लीला आदि में देखते हैं स्वयं सदा
जगह सुख दिखे
विष्णु के हृदय में बलिदान को और अंत में भक्ति भी प्रदान करते हैं।
Vedanta scriptures, still he wasn't satisfied. And then Narada Muni came and said, oh, Prabhu,
You've done so much work, so much hard labor. Why are you not satisfied? Why are you looking so morose? So then Vyasadeva said, oh, Your Honor, you're a doctor, I think. In a Vedic astrology, Vedic medicine, the patient doesn't have to tell the doctor what's wrong. The doctor just has a look at him, looks at his tongue, feels his pulse, then he tells the patient what's wrong. So Narada Muni told Vyasadeva what's wrong. You have these glorified earthly activities, pastimes of Krishna in Braj. Little bit of the Purana. But how the Sakis are playing with Krishna and they're wrestling and sometimes they can beat Krishna. They say, no, I didn't know about this. How Mother Yashoda is twisting Krishna's ear, chasing it, tying him up. Oh, I didn't know these things. How did you know these things? And how the gopis are binding Krishna completely. How he's begging them, please don't leave the Rasadas. I can't live without you. The Supreme Personality Godhead. No, I didn't know. Then Narada Muni instructed him how he can enter into Samadhi and how he can see all these pastimes. And then write the beautiful Srimad Bhagavatam, which is the abode of Krishna after Krishna himself has left this planet. Srila Vyasadeva and Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, also the very prominent. Valmiki. Valmiki was a big dacoit. And Narada Muni came, Valmiki wanted to kill him. Narada Muni said, stop! And he couldn't move. He said, what are you doing? Why are you holding? Valmiki said, I'm supporting my family. Oh, so you think your family is going to share your sinful reactions? Of course. Well, why didn't you go and ask them? So he consulted his family, mother, father, no, you have to support us. Children, no, you have to support us. Why? No, it's your business. Then he went back to Narada Muni. They don't want to, I have to face all the reactions myself. So then Narada Muni instructed him. He tried to make him to chant, Ram, 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 he couldn't chant. Because he's so sinful. So, okay, you chant death. Mara, 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 Ram, 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 Ram. Like this chant for 60,000 years. If we try to chant Hare Krishna for 10 minutes, moving here and there, mosquito comes and all samadhi's finished, bound like this. Valmiki's sitting 60,000 years and the ants are coming and eating up his flesh. And he's just preserving his life and his bones. And then after this, oh, Brahma instructed him how he could compose in Anushtha Mita, how he composed all Ramayana. So, Sri Narada Muni has such eminent disciples, Priyadrata Maharaj, also right down the dynasty. And when he took Darshan and Shikati Radhika in Ravel, so Ravel instructed him that you should go to Narada Kund and then you should perform austerities and then you can get Sarupa's gopi. So Narada Muni also, he performed austerities in Narada Kund and by the grace of Shikati Radhika, he got gopi Sarupa's Narada gopi. So Narada Muni, he's Acharya in our line of bhakti. He's the embodiment of bhakti. He's empowered to distribute bhakti throughout the universe. And we're very fortunate to be coming in the disciplinary succession from Narada Muni. And that we're sitting at the lotus feet of Sri Narada Muni. He's very, very eminent, representative, the embodiment of all the instructions of Sri Narada Muni. So I pray at the lotus feet of Sri Narada Muni and Sri Gurudev, he would make some sprinkle of mercy that I can understand these pastimes and then they'll come into my heart. Hare Krishna. Let me help you to get some of the pastimes you're there. We can have a voice for this girl.
यों तो नारद जी स्वर्ग में भी उनका स्वरूप है, नारायण के पास भी उनका स्वरूप है, एक श्री रामचंद्र जी के भी पास में है, द्वारका मथुरा में भी है, वृंदावन में भी है। हाँ, महाप्रभु जी के लीला में भी है, श्रीवास इत्यादि। वे सब प्रकार के रसों का स्वादन करते हैं, विशेष करके शिव जी से, शंकर जी से, कृष्ण की मधुर लीलाओं को सुनकर उनके हृदय में गोपी भाव और गोपी देह की इच्छा हुई। मैं किस प्रकार से गोपी बन करके गोपियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करूं। इसलिए यहाँ पर गोवर्धन जी सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं जानकर गोवर्धन की ही तराई में चरणों में ये नागकुंड स्थान है, वहीं पर बैठ करके बहु काल तक उन्होंने समाधि से भगवान की सेवा की, आराधना की। मैं समझता हूं कि गोपाल मंत्र और काम मंत्र गायत्री, काम गायत्री की उपासना की होगी और उससे बहुत दिनों के बाद में उनकी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान ने उनको गोपी देह दिया जिसको नारदी गोपी उसको कहते हैं, तो उनकी सिद्धि इस स्थान पर हुई। जो लोग ऐसे दुर्लभ इच्छा को कामना को लेकर के गोवर्धन में रख करके उनकी आराधना करेंगे तो वो लोग भी उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है।
अपने नारद जी का मूल है मधुमंगल जी। आपने बोले एक बार मधुमंगल,
कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है नारद जी का एक स्वरूप सख्त रस में मधुमंगल है और गोपी रूप में नारदी गोपी है। हाँ, यू कैन
Today is the 23rd day of our Vrajamana Parikrama, and how fortunate we are to go to these pastime places. These pastime places which we are visiting have the same potency as Krishna. By going there, by hearing the Harikatha there, by touching the dust of these places, then the endless cycle of material existence named samsara is destroyed. And the feelings that go with it, in terms of I am nine, are also destroyed by touching the dust of these places. These holy places also have the power to bestow one's Siddha Sarup, one's eternal identity. This Vilakata also has the same potency as Sri Krishna himself. It has great power to remove unhappiness. And for the conditioned souls of this world, there is no superior process than visiting these pastime places and hearing the Harikatha associated with them. Today we went to Sri Narad Kund. Sri Narad Kund has many swarups, one in the heavenly planets, one in Vaikuntha with Sri Narayan, one in Ayodhya with Sri Ramachandra Bhagavan, in Dwarka also, in Vrajamanda also, and Sri Narayan also. With these unlimited swarups, he tastes all types of rasa. Especially hearing from Sri Sadashiv, he developed a great greed to achieve the spiritual body of a gopi and to serve the gopi love. Therefore, performing austerities there in Narad Kund, Aradhana, worship, yet he tried to perform service to Radha Krishna under the Anugatya, or the guidance of the gopis. Therefore, Narad Kund is at the feet of Govardhan. And who is Giriraj Govardhan? He fulfills all desires. Therefore, Sri Narayana for a long time performed worship of Sri Radha Krishna by the use of the Gopal Mantra and the Kama Gayatri. After a long time, Bhagavan gave him Gopi Deha, spiritual body, and he became Naradi Gopi. He achieved his perfection there. Also, in some places it has been written that as Sri Madhumango, that Sri Narayana takes Sakti Ras there also in the pastimes of Raja.
बृहद भगवतामृतम गावस्य कृष्ण मुख निर्गृत वेणुगीत पीयूष मुद्भृत कर्णपूटै पिबन्त्य शावार स्नुत तनस्पय कमलास्मतस्थो गोविंदमात्मनि दिशा सुकलास्पिशन्त्य। कृष्ण सखाओं को लेकर इस गोवर्धन की तलाटी में गोवर्धन के पास में गौवें चराते थे। तरह तरह की यहां पर कंदराओं में लीला करते थे। राधा कुंड श्याम कुंड में उनकी मध्यान्हिक लीला होती थी, सर्वश्रेष्ठ मध्यान्हिक लीलाएं होती थी। आप लोगों का सौभाग्य है कि इस स्थली में आप लोग पधारे। यहां कृष्ण समस्त गौएं और बछड़े अपने कान रूपी दोने से कृष्ण के मुख कमल से निकले हुए बेणु गीत का अमृत पान करते हैं। घास चरती हैं गायें, उठ करके खड़ी हो करके कान मुख को ऊपर करके और कानों को लगा करके पीछे मुख से घास बाहर नहीं निकलती, भीतर भी नहीं जाती, भूल जाती हैं, बस आनंद में मग्न हो जाती। और बछड़े जो दूध पीते थे मैया का, वो दूध का कवल, दूध पीना तो छूट गया, कवल मुख में ही यहां पर अटका रह गया, उसको नीचे नहीं ले जा सके और न बाहर कर सके। बछड़ों की प्रेम की ऐसी दशा हो गई और गायों और बछड़ों के आंखों से अश्रु की धार बहने लगती है, प्रेम का अश्रु बहने लग जाता है। पहले श्लोक में बतलाया धन्यात्म मूढ़ मतो अपिहरिण एता, ओहो ये ब्रज की हिरणियां धन्य है, विवेक उनमें नहीं है, विवेक नहीं है, कोई ब्याधा ब्याध बेड़ू बजा करके जब वो आती है निकट में लाठी से उनको पीट करके मारना होता है, जब ये जानती तो निकट नहीं आती। ऐसी मूर्ख जाति ये हिरणिया सुन करके कृष्ण के बेड़ू गने निकट आ जाती है, उनके पीछे पीछे कृष्ण सार हिरण भी उनके पीछे पीछे आते हैं और वो प्रणय की भीख कृष्ण से मांगती है। जब मृगों की ये दशा है तो कृष्ण जिन गायों का पालन पोषण अपने हाथ से करते हैं, खिलाते पिलाते उनके पीछे पीछे बिना छाता जूते के चारों तरफ में दौड़ते हैं, उनकी लोरी सहलाते हैं, बछड़ों को गले में लगा करके सखा जैसा व्यवहार करते हैं, उनकी क्या दशा होगी, कैसा कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, इसको विचार करो। ये हिरणों को गाय को तो ऐसा प्रेम है, हमें कितना प्रेम है, हमें कितना प्रेम है, तौलो, उसके लिए दुख हो विरह, जो हमें बिंदु मात्र भी ऐसा प्रेम नहीं हुआ। तो ये गोपियां गावस्य श्लोक के द्वारा गायों और बछड़ों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पीयूष कृष्ण मुख निर्गत बेणु गीत पीयूष, अरे वो बेणु गीत की जो ध्वनि है ध्वनि नहीं है, अमृत है, वो भी अमृत बैकुंठ वाला स्वर्ग वाला अमृत नहीं, ये अमृत एक विशेष अप्राकृत अमृत है। कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई बंसी की ध्वनि रूप अमृत है। कान रूपी पात्रों से दोनों में भर भर करके पीती हैं,
वो सुन करके वेणु गीत को सुन करके जो गाय जहां है जड़ हो करके वहां पर खड़ी हो गई, कानों को ध्वनि की तरफ में मोड़ दिया, मोड़ देते घोड़े गाय ये अपने कानों को मोड़ देते हैं, मोड़ दिया और वो अमृत उनके कानों में भर भर करके आने लगा और वो पीने लगी, भूल गई सब कुछ। वो घास जो चल रही थी उनके मुख में अभी है, न निगल पाती है और न बाहर कर सकती है। मुख को क्यों ऊपर उठाती है? मुख इसलिए कि कान ऊपर रहेगा तो वो अमृत की धारा कहीं नीचे न गिर जाए, इस डर से मर। इस प्रकार कान रूपी दोने से बंसी के ध्वनि रूप अमृत को भरकर परमानंदित को पार करती करती तृप्त नहीं होती, खड़ी की खड़ी रह जाती और बछड़े मैया के स्तन से बंसी को सुन करके दूध अपने आप चुचुआ रहा, गिर रहा, बछड़े उसको पी रहे थे किंतु बीची में बंसी ध्वनि रूप अमृत को अपने कानों से सुनकर भूल गए पीना। मुख उनके मां का स्तन मुख में ही है, पीना भूल गए, जो मुख में दूध था वो भी गले में ही यहीं पर रहा, मुख में ही, न भीतर गया न बाहर आया, सारी क्रियाओं को भूल गए और निश्चल होकर के जड़ की भांति खड़े हो जाते हैं। ओ कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह उदय होने के कारण गायों के स्तन से अपने आप दूध जो झड़ता है उसको पीना भी भूल जाते हैं, इसलिए ये गायों का और बछड़ों का कितना सौभाग्य है। हम घर में बैठी है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है, उससे अमृत भी निकल रहा और हम निकट में जाकर के गाय बछड़ों जैसे हिरणों जैसे भी उसका श्रवण करके अपने कानों रूपी दोने से पी नहीं सकते। हम उन गोविंद को दर्शन भी नहीं कर सकते। बंसी का कि ध्वनि रूप अमृत का आस्वादन करने वाला आस्वादन और हृदय में स्फूर्ति से उत्पन्न आनंद से विवश होकर के ये गाय और बछड़े दोनों स्थिर हो जाते हैं। इस तरह से गाय और बछड़ों का कृष्ण की बंसी के ध्वनि के प्रति इतना रस है। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर भुज तृणरेषितेन लिप्यन्ते आनन कुचेषु जहौ तदाधि। कौन वर्णन कर रहा है? अभी तीन चार दिन के बाद ही मैं मरने वाले हैं परीक्षित महाराज, और कृष्ण की इन मधुर लीलाओं को सुना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बस लीला सुनो, और इन लीलाओं को सुनते ही परीक्षित जी तन्मय हो रहे हैं। उनके हृदय में भी कैसी कैसी भावनाएं उठती होती हैं जबकि हम लोगों के मरने ही ऐसी भावना हो, उनकी कैसी गति हो गई है कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने भी मैं समझता हूं जैसा कि वो खुद ही वर्णन करते हैं, माँ के लिए कहते हैं कि माँ कृष्ण को अपना ससुर है अपना भूल जाओ। गोपियां जैसे कृष्ण को परम प्रियतम मानती हैं वैसे ही तुम भी मानो तो जो उपदेश देने वाला है उसका कैसा भाव होगा, उसका भी वैसे ही भाव होगा।
सनातन गोस्वामी लिखा टीका में गोपी भाव युक्त है, गोपी भाव प्राप्ता,
इसलिए पूर्णा पुलिंद उर्गाय, यू कैन ट्रांसलेट
Sri Sanatana Goswami is continuing his Brihat Bhagavatamrita of Sanatana Goswami. Therefore, Krishna is taking his thousands of friends, the Sakas, calibrating to Govardhan. How many varieties of pastimes are performed in these unlimited caves? And his eyes are Radhakund and Shankund, where Radha Krishna performed their Madhyamik Leela, which is the topmost of all pastimes performed in Vrindavan, in Brajamanda. And how fortunate we are to be sitting in this very same place. Therefore, the gopis are describing, just eat the cows by drinking the nectar of Krishna's flute.
Explain this Purna
with
please.
With their ears like cups, they are drinking the nectar of the Vedugi. The grass is in their mouth, therefore the grass is not going inside, nor is it going outside. In ecstasy, they have become stunned, and the grass is simply remaining in their mouth. The calves, in a similar way, are also becoming ecstatic. Becoming stunned by hearing the sound of Krishna's flute, the milk is not going in their stomach, nor is it falling from their mouth. From the calves and the cows, loving tears of ecstasy are flowing from their eyes. In the previous verse we heard, Dhamya Samuli, Abhiharinya, O Sakhi, the deer are most fortunate, even though they are foolish and have no discrimination. They are going right near to Krishna, and their husbands who are Krishna Sahib are also following. Their husbands are not disturbing them, and the deer are begging pranaya, loving relationship with Krishna by their glances. Therefore, how fortunate are the cows? Krishna is nourishing them with his own hand. And without umbrella or shoes, Krishna is moving here and there with them. Krishna hugs the necks of the cows like suckers, like friends. Therefore, how much that we should measure how much prayer we have compared to the suckers of Krishna or the calves. Therefore, this is not a flute sound, it is actually nectar. This nectar is not the nectar of the heavenly planets. It is the apricot nectar, the transcendental nectar emanating directly from the lips of Sri Krishna. And drinking that nectar, the ears of the cows have become like donors, like cups. And they turn towards Krishna with their heads in the air, so the nectar will not go in one ear and out the other, but rather it will stay there. Hearing the nectar that sound, they forget they are chewing grass, and the grass is not falling in, is not going inside their stomach, nor falling from their mouth. The cows are not satisfied by hearing, they want to hear more and more. And the cows, their situation is also similar. With their mouths on the udder of their mother, they are stunned and they are forgetting to drink the milk. The milk is not going inside or outside. Rather, the calves have become stunned. All their other activities have finished and they are simply drinking the nectar of Krishna's food sound. Because their loving affection to Krishna has increased unlimitedly, they are forgetting to drink the milk. The gopis say, how fortunate are the calves and the cows that go with Krishna. Alas, the gopis say, we are in our homes, and we are not fortunate like the animals, like the deers and the cows. We cannot taste the nectar of the flute sound of Krishna, nor can we have go near to Krishna and have darshan like the animals. We are unable to do like that. Therefore, how much nectar is in the Vedugi, the sound of Sri Krishna's flute? And how much nectar is in this Vedugi described by Sri Sukadeva Goswami? Who is speaking this? This is spoken by Pariksit Maharaj. And who is hearing? His mother. Sri Pariksit Maharaj will die in just a short time. But what is he doing? He is not doing anything. He is simply hearing this Lila Katha. Therefore, Pariksit Maharaj said, O mother, you should not forget that Krishna is my sasu. Sasu means what? Father-in-law. You should forget that relation with Krishna. And you should have a relationship. Krishna is my beloved, just like the gopis. In his tickets, Sri Sanatana Goswami comments that both Sri Pariksit Maharaj and his mother are both endowed with gopi bhava.
Very good. Oh, Purna Pulinda Urugaya, you should explain.
Therefore,
She was unconscious.
And the Sakis were trying everything they could to bring it to sense, but everything failed. So they went to Purnamasi Devi. Purnamasi Devi said, you should bring her to my Parnakuti, my cottage of leaves. Bring her there. And at the same time, Purnamasi Devi, she told her grandson, Madhumanga, go and bring Krishna. So Radhika Sakis brought the Radhika in the unconscious condition to the kutir of Purnamasi Devi. And after some time, Sri Krishna arrived there. He was brought there by Madhumanga. So when Sri Krishna arrived, Purnamasi Devi said to him, just look and see, what is this? And Krishna peered inside, could see someone was unconscious inside. Krishna said, who is she? Who is she? Madhumanga said, hey, if you know, lightning lives inside the cloud. But if lightning is coming out from the cloud, it cannot go back inside and hide. In other words, he was saying, oh, this Kishori, she's living in your heart now, she's come outside, you cannot deny it. Sri Krishna said, oh, Holy Mother, Purnamasi, this boy has a disease of Vayu. It made his mind disturbed. And it's his habit also to make false allegations against innocent people. I don't know who she is. Purnamasi said, oh, we know why she is unconscious. Because of your foot pain, she has so much affection for you. So you should save her life, should go and touch her. She said, it is against Dharma. I cannot do it. Purnamasi Devi said, no, I am your Guruji. If you follow me, you will be following Dharma. And the reaction of Adharma, this is mine. I am telling you to do it. Krishna said, oh, please, I don't want to disobey you. Please give me another instruction. So then Brinda Devi, she took Krishna and brought him inside the kutir and sat him down. And said, look on her. How beautiful she is. She's dying without you. Please touch her. But Krishna was silent. Could not move. He could not say anything. So Brinda Devi, she fell at the feet of Sri Krishna. Oh Krishna, please save her life. But falling at the feet of Sri Krishna, it was only a trick. Because she took the feet of Krishna and put them on the heart of Radhika. There and then. And as soon as Radhika was touched by the lotus feet of Krishna, her eyes began to open and she looked and saw, oh my grand brother, my beloved is there. But Sri Krishna, his reaction was astonishing. Why? When he came inside that Parnakutir and saw Radhika there, he was affected by so many sattvic vikar that he could not understand if this is Radhika or if this is one Swarna Murti, one golden Murti. He thought, they have brought me here just to test my reaction, how I react. But when his lotus feet touched the heart of Radhika and she opened her eyes, he realized, oh, directly, this is Krishna Bhavanandini. And Krishna, his young, he became nervous and afraid and ashamed.
Try to explain this slow.
Yes, Prudha.
Don't go so much.
And see, Krishna immediately ran out of the kutir, gave pranam to Purnamasi Devi, and stumbling, he could not walk because his feet were so embarrassed. Keeping his hand on the shoulder of Madhumanga, and he fled from there. As he was going now, the kumkum from the breast of Radhika was on his lotus feet and it came on the grass here at Bhagiraj Govardhan. At that time, two pulindigos, one name is Mali and the other name Bringi, and they came there and they took this kumkum from the grass, became overwhelmed with love and smeared it on their bodies. So Srila Jiva Goswami Pad explained this commentary. He said, when Radhika, for the first time, felt the touch of Sri Krishna's lotus feet, how ecstatic she was, how happy she was, with words no one can describe. And therefore, in this verse, Purna Pulinda Uragaya Padabjaraga, Braj Gopis are speaking by Kaimotik Nyai. You know Kaimotik Nyai? Logic of Kim Uttar. Yes? If this person, this man is strong, if he's 10-year-old boy, he can lift 500 kilos. How King Uta, what do you speak of his father? How strong he will be? This is called logic of King Uta. So through the medium of this verse, perhaps gopis are saying, if the Pulindi girls, by the touch of this kumkum from the breast of Radhika that was on the feet of Sri Krishna, only by touching this, they became completely ecstatic and all their desires were fulfilled, then King Uta, how much more ecstatic Srimati Radhika was to feel the touch of Sri Krishna's lotus feet? Words cannot describe it. Unprecedented. Srila Jiva Goswami Pad gave this commentary on this verse of Srimad Bhagavatam. Kuna Pulinda Urugaya Pajabjarada Shikun Kumena Daita Sparamandutena.
हिंदी में इसका एक्सप्लेन करो।
उनका कितन कौन है?
राव। एक पौर। एक पौर।
देखा सिखा नहीं, सिखा के तो नहीं सकते।
गुरुजी गुरुजन राज।
जब प्रेम पे जब सिखा के तो दिया जाए,
हाँ?
जब प्रेम पे जब सिखा के तो दिया जाए, सिखा नहीं फिर लगता।
देख
लो। प्रेम गीत के अंत दिल्ली स्लोग आता है। जहाँ गोपियों की पुलवराज का वर्णन हुआ है, पुलवराज के बिना मिलन नहीं होता है और मिलन से ही पुलवराज, गोपियों का पुलवराज नित्य नवीन है। कृष्ण को जितना ही देखे उतना ही उनका अनुराग बढ़ता जाए। गोपियाँ सोचती हैं कि यही जीवन में पहली बार, पहले कभी देखा ही नहीं। राधा जी ने भी ऐसे ही पहले कभी देखा नहीं कि यही पहली बार देख रही हूँ। इस प्रकार नित्य नव नवाम्बा रूप में जब कृष्ण के प्रति की इस भावना का उदय होता है तब उसे अनुराग कहा जाता है। और वही अनुराग जब की स्वसंवृत्त दशा जावराष्ट्र वृत्ति को प्राप्त हो तब भाव होता है कि जब अपने हृदय में भावों को कंट्रोल नहीं कर सकते, भाव अपने आप उदित होता है और अपने लिए ही समाता है। इसलिए ऐसी स्थिति को कहा गया है भाव। और भाव की स्थिति में सुभान नंदिनी जो कि पूरा पुलिंद उर्गाय पदार्थ राज और ये राधा जी के मुझे कुमकुम है, जिस कुमकुम को एक कुमकुम घासों के ऊपर लगा हुआ है श्री कृष्ण के चरण से स्पर्श प्राप्त। और पुलिंदी कन्याएं जहाँ की प्रकृति ऐसी पुलिंदी कन्याएं जो नीच जाति वाली कही जाती है साधारण जाति की भी सब कन्याएं जबकि इस कुमकुम को देखा उससे स्पर्श करके एकदम भाव में विवाहित हो गए। तो राधा जी के भाव कैसे हैं और राधा जी स्वयं उस भाव में विवाहित होकर के कहती है देख रही है इन पुलिंदी कन्याओं को कितना अनुराग है कृष्ण के प्रति, जिस कुमकुम के स्पर्श से ही उनके हृदय में भाव उदय हुआ।
प्राप्त कर ले अर्थात भाव उस समय कंट्रोल में नहीं रहता है जितना
इसलिए पूर्णा पुलिंद गुरु गाय पदाब्ज रागम इस बेहगीत के द्वारा गोपियों के भावों का वर्णन हुआ है।
तो स्वयं राधिका जी ही इस श्लोक को कह रहे हैं। ओ, इस वन की पुलिंदियां, पुलिंदी स्त्रियां, इनका ही जीवन धन्य है, ये कृतार्थ हो चुकी हैं। दैतास्तर मंडते न, मैं ही सबसे प्रिय दैता हूं, कृष्ण की प्रियतमा हूं, ये तो भूल गई और उसी को करें। और किसी प्रियतमा के वस्त्र का कुमकुम कृष्ण के चरणों में लग गया और फिर चरण से जब कृष्ण ओस भरी घासों पर चलते हैं तो कुमकुम घासों पर लग गया और उसे देख करके ओहो ये पुलिंदियां, उनके पुलिंदियों के हृदय में काम बढ़ गया, काम उत्पन्न हुआ, उस कुमकुम में इतनी शक्ति है ये उनको काम हुआ पहले। अब जब काम हुआ, काम से व्याकुल हो गई तो उसको शांत करने के लिए उन्हीं कुमकुम को अब ग्रहण करके अपने मुख में और सब जगह में लीपोट कर दिया। कि देखो तो ये पुलिंदिया धन्य है, इनका कितना अनुराग है, हमारा तो इनके जैसा अनुराग नहीं है। ये महाभाव का ये लक्षण है इन गोपियों में है। इस तरह से यदि पुलिंदियों का कृष्ण के प्रति अनुराग इतना है तो गोपियों को कितना होगा, और गोपियों में यदि इतना अनुराग होगा तो राधा जी में कैसा अनुराग है, ये वर्णन से अति बहुत सुंदर व्याख्या है।
देखो इस वर्ष के श्रीमद् भागवतम has been spoken by Srimati Radhika herself. For the Krishna Sasha, she is forgetting that kumkum that is now on the feet of Krishna, that is her kumkum. Where has it come from? It has come from her body. But being bewildered, these are symptoms of Mahabhav, and she is saying, oh, Sambilavad. Krishna has taken the kumkum from Sambilavad upon his feet. That kumkum from the body of that beloved has come on the feet of Krishna somehow. And the Punitis, seeing that kumkum on the grass, thereby seeing that they calm, their lust has been awoken. So first their calm was awakened, and in order to pacify their calm, they took that kumkum and smeared upon their bodies and upon their face. Therefore, if the Pulindis have so much anurag towards Krishna, imagine the anurag in the gopis. And if the gopis have so much anurag towards Krishna, imagine the anurag that Srimati Radhika has towards Krishna.
Samasta shastron ka priyojan kisi prakar se jeev ke hriday mein ye prem उदित कराना है। समस्त शास्त्रों का, समस्त आचार्यों का, विशेष करके महाप्रभु की धारा में जाए दे दो, यही जीव का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने विभिन्न देशों से यहां से आप लोगों को निमंत्रित किया। ये सब कथाएं जगत में नहीं होती, सुखदेव गोस्वामी ने जो ये रसगत विचार जो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, सुनाने का लक्ष्य क्या है, उनकी सेवा को देख करके हमारे मन में ये उदित हो जे ऐसे ही प्रेम की आवश्यकता, यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यदि लक्ष्य स्थिर हो गया फिर उपदेशामृत से आरंभ। इसलिए परीक्षित महाराज जी इन सब विषयों को, उनके प्रेम को, प्रेम का वर्णन कर रहे हैं।
Therefore, all the scriptures have described that the topmost achievement or apriyojan is this prayer of the gopis, especially the conception coming from the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, all jivas should understand that this is their topmost goal and they should fix it very firmly in their hearts. Therefore, this katha that we are hearing, this is not being spoken here and there. We are very fortunate to hear this here. And what is the reason we are hearing such topics? By hearing these topics, we can develop some greed. Oh, if I could achieve this topmost prem, my life would be successful. In this way, we fix our goal. And how to achieve that goal? Then we come to the teachings of Sri Rupa Goswami as given in Sri Upadeshamrita. Therefore, Parikshit Maharaj, with this intention in his mind, is speaking such nectar katha to his mother.
Kirtan Kejiye.
Thank you.